الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأمه صديقة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. اس کلاس کے اندر ہم مثالی ماں کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں، جو کہ ہمارے حضرت کی کتاب مثالی عورت کا ایک مضمون ہے، اور اس میں جو عنوان آج کل چل رہا ہے وہ ہے نوجوان بچوں کے وارننگ سائنز، خطرے کی نشانیاں. پچھلی کلاس میں ہم نے ایکسپلین کیا تھا کہ خطرے کی نشانیاں جاننا کیوں ضروری ہے، اس لیے کہ جو اصل خطرے کی چیز ہوتی ہے وہ عموماً نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، تو اس کو نشانیوں کے ذریعے سے پہچاننا ہوتا ہے. اگر کسی کو نشانیوں کا پتہ ہوگا تو پھر وہ خطرے کا پہلے سے انتظام کر لے گا، اگر اس کو نشانیوں کا نہیں پتہ ہوگا تو جب خطرہ اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کو روکنا یا اس کو بند کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. سادہ سی مثال اس کی آگ کی ہے کہ آگ جو ہے وہ جلا کے بھسم کر دیتی ہے، چیزوں کو ختم کر دیتی ہے. تو اگر انسان کو آگ کی نشانی کا علم ہوگا کہ بھئی دھواں جو ہوتا ہے وہ آگ کی نشانی ہوتی ہے، تو دھواں دیکھتے ہی وہ سمجھ جائے گا کہ اب کوئی خطرہ ہے آگ کا، تو اس کو ہمیں کچھ کرنا چاہیے. وہ فائر ایکسٹنگوشرز کے لیے بھاگے گا، وہ کوئی اور حفاظتی انتظامات کرے گا، اور اس طریقے سے وہ چھوٹی آگ کے اوپر ہی قابو پا لے گا. لیکن جب آگ بڑھ جائے گی، تب اس کو جب آگ نظر آئے گی تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. یہی معاملہ جو ہے وہ بچوں کے زندگی کا بھی ہوتا ہے کہ ان کی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے کچھ سائنز ہوتے ہیں جن سے کہ پہلے پتا چل سکتا ہے کہ بھئی یہ کوئی مسئلہ ہے، اس کو ہمیں روکنے کی ضرورت ہے. تو اس میں حضرت نے جو پوائنٹ نمبر 5 کے اندر بتایا تھا کہ سیلفیز، یعنی اپنی تصویریں بنانا. معاف کیجیے گا ذرا، اسپتال میں تو اس طرح کی آوازیں چلتی ہی رہیں گی، والد صاحب ایڈمٹ ہیں تو ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر کے آج کر رہا ہے کلاس. کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا آہستہ آواز میں بات کی جا سکے. والد صاحب تو دبا کھا کے جو سوئے ہیں تو ان کو تو آواز کوئی نہیں آ رہی، لیکن دوسری آوازیں جو ہیں نا وہ کلاس میں آ رہی ہیں، تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو ڈسٹربنس ہو رہی ہے. بہرحال، تو سیلفیز بنانے کے بارے میں لکھا تھا کہ لڑکیوں کے بارے میں خاص طور پر سیلفیز بنانا. سیلفیز کہتے ہیں موبائل فون کے ذریعے سے اپنی تصویریں بنانے کو. آپ جس لڑکی کو دیکھیں کہ وہ اپنی تصویر خود بنا رہی ہے، تو یہ بہت زیادہ خطرے کی بات ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. یہ اپنی تصویریں بنا کر اپنے دوستوں کو بھیجنا چاہتی ہے، لہذا اس پر بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے تصویروں کے بارے میں پچھلی کلاس میں کون سی والی خطرناک بات بتائی تھی، وہ ذرا سا آپ بتا دیں تاکہ کچھ دہرائی ہو جائے. ٹھیک ہے، ہم نے تصویروں کے صرف ایک پہلو کے اوپر پچھلی کلاس میں بات کری تھی، وہ کیا تھی؟ جی سمجھ لیں، پچھلی کلاس کا یہ کوئز ہے. بلیک میجک. ٹھیک ہے، ویسے میں نے بلیک کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، صرف جادو کا لفظ استعمال کیا تھا. ٹھیک ہے، تو تصویروں کے ذریعے سے جو ہے نا وہ جادو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو صرف ایک مسئلہ تھا. دوسرا مسئلہ کیا، جیسے کہ حضرت نے لکھا کہ تصویریں بنا کے دوسروں کو بھیجنا. ٹھیک ہے، تو جب دوسروں کو بھیجتے ہیں تو جادو تو ہونا ایک مسئلہ ہے نا، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا، بلکہ ہم نے تو جو گروپ ہے واٹس ایپ کا اس کے اوپر بھی شیئر کیا تھا اس کے بارے میں کچھ مواد، کہ آج کل جو ہے نا وہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے کسی کی بھی شکل کو جو ہے نا وہ کسی بھی قسم کے جسم کے اوپر پیسٹ کیا جا سکتا ہے، اور ایسے کیا جائے گا کہ بالکل پتہ نہیں چلے گا کہ یہ تصویر شکل کسی اور کی ہے اور یہ جسم کسی اور کا ہے. ٹھیک ہے، تو اب بالکل ایک برہنہ جسم کسی عورت کا ہو اور اس کے اوپر آپ کی بیٹی کی شکل کو پوسٹ ایسے کیا جا سکتا ہے کہ وہ بالکل 100% حقیقت لگے. तो ये तो सिर्फ तस्वीर है ना, बल्कि अगर शक्ल मिल जाए तो बाकायदा वीडियो के ऊपर भी पोस्ट किया जा सकता है। ये टेक्निक्स, ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है कि बाकायदा इस किस्म की कोई वीडियो भी जो है ना उसके ऊपर भी शक्ल को पोस्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। अब आपके वहमो गुमान में नहीं होगा कि आपके साथ क्या किया जा रहा है, लेकिन चूंकि आपकी तस्वीर जो है वो किसी के हाथ लग गई है जो कि आपका दुश्मन है, आपका हासिद है, या आपके साथ इवन मजाक करना चाहता है या चाहती है, वो आपके साथ ये काम कर सकते, ठीक है। तो अब इसका क्या हल है? इसका सिर्फ एक हल है कि भाई ये जो तस्वीर है ना, जिसका कि हमारे दीन में कोई गुंजाइश ही नहीं थी, दीन में हमारा हमारा दीन बिल्कुल एक तस्वीर फ्री दीन है, तस्वीर फ्री दीन है। नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत से पहले तस्वीरें होती थीं, ये नहीं है कि उस जमाने में तस्वीरें होती नहीं थी। हाँ ठीक है, कैमरे से तस्वीरें नहीं बनाई बनाई जाती थी, लेकिन हाथ से तो बनाई जा सकती थी ना। और जो मुसव्विर लोग होते हैं, आपने क्या नहीं देखा कभी किसी किसी स्केच आर्टिस्ट को नहीं देखा कि जब वो हाथ से तस्वीर बनाता है तो कितनी रियलिस्टिक तस्वीर लगती है वो। तो खाली कैमरे की तस्वीर रियलिस्टिक नहीं होती, बल्कि हाथ की तस्वीर भी बड़ी रियलिस्टिक होती है, ठीक है। ऐसे ऐसे पेंटर्स होते हैं, ऐसे ऐसे इवन पेंसिल से स्केच करने वाले होते हैं जो बिल्कुल रियल तस्वीर बना देते हैं। तो ये चीजें पहले से मौजूद थी और वो पिछली शरीयतों के अंदर जायज भी थी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत के अंदर अल्लाह ताला ने इनको नाजायज कर दिया, तस्वीरों को मिटा दिया। काबतुल्ला के अंदर तस्वीरें मौजूद थी, सबको मिटा दिया। हालांकि उन तस्वीरों की निस्बत यानी ये की जाती थी कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तस्वीर है, ये जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर है, या फलाने की तस्वीर है। सब तस्वीरों को नबी अलैहिस्सलाम ने मिटा दिया, और पूरी तारीख के अंदर सिवाय जो बदअकीदा लोग थे, खुसूसन ईरान के, और जो है ना ये जो शिया, ये जो लोग हैं ना, इनके यहाँ जो है वो तस्वीरों का सिलसिला चलता रहा, लेकिन जो सही अकीदा अहले सुन्ना वाल जमात के लोग थे उनमें तस्वीरों का कभी भी वजूद नहीं आया, ठीक है। अब जो है वो कैमरे की, सिर्फ कैमरे की जो के क्या कहते हैं, डिजिटल फोटो जिसको कहते हैं ना, उसके जवाज का तो फतवा आ गया है, उसके जवाज का तो फतवा है, लेकिन भाई फतवा तो है वो, फिर फतवे का मतलब ये तो नहीं होता ना कि अब जो है वो जो बुरा इस्तेमाल है वो खत्म हो गया उसकी वजह से, ठीक है ना। तो भाई फतवा है तो किसी वजह से है, जब वो वजह नहीं है तो फिर तो अब उस तस्वीर को किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है ना, ठीक है। तो तस्वीरों से दूर रहें, तस्वीरों से दूर रहें। जब आपने अपनी बच्चियों को या बच्चों को जो है वो तस्वीरों की इजाजत दे दी, जाहिर है आप खुद जब तस्वीरें खींचती हैं तो बच्चों को कैसे मना करेंगी, खुद जो है वो आपके जो है वो फोन के अंदर आपकी तस्वीरें जो है वो भरी पड़ी हुई होती हैं, आप बच्चों को कैसे मना करेंगे, ठीक है ना। जब एक दफा इस लाइन के ऊपर वो चल पड़ी है ना, तो ये तस्वीर खींचना खिंचाना जो है ये एक ऐसा ऐसा नशा है, ये देखिए ये भी एक नशा है, ठीक है ना। ये नशा जब लग जाता है ना तो आपको पता है कि नशे से छुड़वाना जो है ना फिर आसान काम नहीं होता, राइट। सिगरेट का नशा, चरस का नशा, और जो है वो आइस, आजकल जो आइस होती है उसका नशा, उसके लिए फिर रिहैब में जाना पड़ता है, राइट। बकायदा इलाज करवाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के नशा खत्म होता है। 1 मिनट तो ये एक ऐसा नशा है ना जो कि फिर उसके बाद नहीं उतरता, उसके लिए फिर रिहैब में जाना पड़ता है। रिहैब में जाने का मतलब यह है कि मरीज खुद तैयार हो नशे से बाहर निकलने के लिए, तब कहीं जा करके वो नशा उतरता है, और वो भी बड़ी बड़ी तकलीफ के साथ उतरता है, बड़ा वक्त लगता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो अब ये जो है ना, ये सेल्फीज ना बनाना, भाई जब आपने सारा काम कर लिया तो अब उसके बाद आखिरी जो स्टेप है सेल्फी बना करके भेजना, उसको आप कैसे रोकेंगे, है ना। यानी कोई अकल तमीज की कोई बात होनी चाहिए ना, जब जब आप हर चीज ही सारा काम कर चुके हैं तो फिर उसके बाद आप कहें कि नहीं भाई अब तुम, वही बात हो गई ना कि समंदर में जो है वो फेंक दिया, पानी में फेंक दिया, और फिर उससे कह रहे हैं कि तुम गीला मत होना, है ना। गीला होगी ना अगर तुम तो मैं तुम्हें थप्पड़ लगाऊंगी, मैं तुम्हें मारूंगी, मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी, है ना। भाई समंदर में फेंक दिया, अब गीला होने के अंदर क्या रह जाता है, अब तो वो ऑटोमेटिकली उसने गीला होना है,
ठीक है, तो यही बात है, सेल्फीज यानी जब सब कुछ हो गया तो सेल्फीज से कैसे बचेगी फिर वो, या कोई और बच्चा कैसे बचेगा, ठीक है ना। तो जब आप इस रास्ते पे चले गए ना, तो फिर उसके बाद बी रेडी, तैयार रहें कि जब आपके साथ कोई इंतहाई भयानक किस्म का कोई मामला होगा, और उसके बाद फिर आपको ये शेर सुनाए जाएंगे कि अब पछतावे क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो अगर आपको वो खेत चुगने का जो है ना वो प्रॉब्लम है, तो फिर बेहतर यह है कि अभी से जो है वो उसके एहतियाती तदाबीर कर ली जाए। अब तक जो गलती कोताही हो चुकी है उसके ऊपर अल्लाह ताला से माफी तलाफी की जाए, और अल्लाह ताला से फिर हिफाजत के लिए मदद मांगी जाए, क्योंकि आपकी तस्वीरें, आपके बच्चों की तस्वीरें जो सारी दुनिया के अंदर आप फैला चुकी हैं, ठीक है, तो अब इनको कोई दूसरा नहीं बचा सकता सिवाय अल्लाह के, ठीक है ना। किसी के बस में नहीं है, आप इन तस्वीरों को रिकॉल नहीं कर सकती, ठीक है ना, आप इनको जो है वो पुल नहीं कर सकती दूसरों के कंप्यूटर्स में से, दूसरों के फोन में से। अब कौन हिफाजत करेगा? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह, यानी असबाब नहीं है, वरना हिफाजत के लिए हम असबाब इख्तियार करते हैं ना। अल्लाह ने तो वैसे हर एक हर चीज की अल्लाह ने हिफाजत करनी होती है, अल्लाह के अलावा कोई हिफाजत किसी भी चीज की नहीं कर सकता, लेकिन असबाब तो इख्तियार कर सकते हैं ना, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसा मसला है कि जिसके अंदर अब आप असबाब भी इख्तियार नहीं कर सकते, अब सिर्फ और सिर्फ मुसब्बिबुल असबाब से मदद मांगना, और उसको मदद अल्लाह से मदद मांगने का तरीका यह है कि अल्लाह को राजी करना अपने आंसुओं के जरिए से, ठीक है ना, अपने आंसुओं के जरिए से, अपनी निदामत के जरिए से अल्लाह ताला को मनाना, ठीक है, और अल्लाह की मदद मांगना। ये हो गया पांचवा पॉइंट। और फिर उसके बाद छठा पॉइंट जो है वो है कि इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड, इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड, ठीक है ना, क्योंकि ये खतरे की अलामत है ना। तो कहते हैं कि जी बच्चे का वालदैन के साथ झगड़ना, अगर ये लड़ाई बढ़ रही है, बच्चा आपके साथ झगड़ रहा है, आपकी मुखालिफत कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये खतरे की अलामत है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये खतरे की अलामत है, ठीक है। अच्छा, एक और बात पिछले पॉइंट के बारे में सुन लीजिए, वो रह गई थी कि उलमा और मशायख को तस्वीरें खींचता या अपने बच्चों की तस्वीरें खिंचवाता देख करके उनकी इत्तबा करने की कोई जरूरत नहीं है। कान खोल के इस बात को सुन ले, ठीक है ना। ये जो अल्लाह ताला ने फत्तबे सबीला मन अनाबा इलैया का जो हुक्म दिया है ना कुरान मजीद के अंदर, कि इत्तबा करो उन लोगों की कि जो मेरी तरफ जो है वो रुजू करने वाले हैं, ठीक है ना। अब हम अपने उलमा मशायख के बारे में यही गुमान रखते हैं ना कि वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाले हैं, ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाले हैं, जबी तो हम उनको अपने मशायख कहते हैं, जबी तो उनको हम अपने उलमा कहते हैं, ठीक है ना। तो अब अल्लाह का तो हुक्म है कि उनके रास्ते की इत्तबा करो, तो अब वो तस्वीरें खींच रहे हैं तो हम भी तस्वीरें खींचेंगे क्योंकि अल्लाह का हुक्म है ये। नहीं, कान खोल के इस बात को सुन लें, और इस बारे में किसी किस्म की गलतफहमी का शिकार होने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं, हरगिज नहीं, फत्तबे का जो लफ्ज का जो हुक्म है वो तस्वीरों के मामले में अप्लाई नहीं होता है, तस्वीरों के मामले में अप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप इसके इसको बहाना बना रही हैं, इसको एक्सक्यूज बना रही हैं, देन यू विल हैव टू पे फॉर इट, यू विल हैव टू पे फॉर इट, ठीक है ना, आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, आप नहीं बच सकेंगे, ठीक है ना। ये इसको कहते हैं दीन का अब्यूज, दीन का अब्यूज, नॉट यूज, ठीक है ना, किसी ऐसी चीज के अंदर कि जो के शरीयत के अंदर ठीक नहीं है, जिसके आपको हर किस्म के नुकसान नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, और वो शरीयत में भी नहीं है वो चीज जायज, ठीक है ना। अब उसको जो है वो किसी दूसरे को बहाना बना करके उसको फॉलो करते रहना, उसको जो है वो अमल करना शुरू कर देना, इसकी हमारे शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है इसकी हमारे शरीयत के अंदर, ठीक है ना। कि जी वो भी तो करता था और वो भी तो करते हैं और वो तो इतने बड़े हैं और वो तो इतनी बड़ी हैं और वो तो वैसी हैं और वो तो वैसी हैं, ठीक है, ये बिल्कुल भी ये, और इसकी बहुत सारी नजीरें हैं हमारे दीन के अंदर कि अगर वो कोई ऐसा काम करते हैं जो कि दीन के अंदर ठीक नहीं है, तो हम ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे कि उनके उस काम की तावील करेंगे, कोई इस तरीके से उसको एक्सप्लेन अवे करेंगे, कोई उसकी जो है ना वो हम उनकी तरफ से तावील बनाएंगे, हम अपने लिए उसको जायज नहीं करार दे देंगे। हम शरीयत को नहीं बदल सकते, किसी के भी अमल को देख करके हम शरीयत को बदल नहीं सकते, ठीक है, हरगिज नहीं बदल सकते हम शरीयत को, ठीक है। और इसके ऊपर ये आजिज जो है वो मिसाल भी देता है कज़िबात इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो हदीस मुबारका के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने झूठों का तस्करा फरमाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लाइस का तस्करा फरमाया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तीन झूठ मंसूब है। तो ये जो तीन झूठ मंसूब हैं, और ये हदीस के अंदर ये किसी किसी ये बनी इसराइल की रवायात नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कज़िबात इब्राहिम, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, क्या हम भी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी नाउज़ बिल्ला बोले थे, हालांकि उन्होंने बोले तो नहीं थे, लेकिन हाँ भाई उन्होंने भी बोले थे, तो हमारे लिए भी झूठ जायज हो गया? नहीं, बिल्कुल जायज नहीं हो। तो फिर हम क्या करें, हम उनकी इत्तबा नहीं कर सकते इसके अंदर, हम क्या करें, हम इसकी तावील करेंगे। और हमारे मशायख ने, हमारे उलमा ने इसकी बड़ी तफसील के साथ तावील करी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, हमने अपने बयानात के अंदर उसको समझाया भी है, खोल खोल के उसको बयान किया है कि कैसे कैसे मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जो कज़िबात मंसूब हैं उनकी कैसे तावील करी, ठीक है ना। और तावील करके समझा समझा करके उसको यही प्रूफ किया है कि नहीं, वो जो मामलात थे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खास मामलात थे और वो झूठ नहीं थे। ये हरगिज नहीं किया कि कज़िबात का लफ्ज़ सुन करके, यानी जाहिरी तौर पे वो जैसे लगते थे कज़िबात लगते थे, तो अब उसके बाद कहा कि हाँ भाई शरीयत के अंदर झूठ बोलना जायज हो गया क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नाउज़ बिल्ला बोले थे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं जायज हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से जो है वो हर ऐसी चीज के ऊपर कि जो के कयास से हट करके हमें नजर आती है, ठीक है, कयास किया है कि भाई हमारे जो अकाबरीन हैं, हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो मशायख हैं, वो दीन को फॉलो करते हैं, उनका हर काम दीन के मुताबिक होगा, लेकिन अगर कोई चीज हमें उसके खिलाफ नजर आती है तो हम उसको अपने लिए जायज नहीं करेंगे, बल्कि हम उनके लिए मखसूस रखेंगे उसको और उसकी तावील करेंगे उनके लिए, ठीक है, ताकि उनके बारे में जो है वो बदगुमानी ना हो, चाहे उनके बारे में, ताकि उनके बारे में जो है ना वो कोई गलत तसव्वुरात किसी के जहन में ना आए, तो इस वजह से तावील करेंगे उनके लिए, खुद के लिए उसको जायज नहीं करेंगे, ठीक है। तो तस्वीर के बारे में भी, तस्वीर के मामले में भी इस बात को अच्छी तरीके से याद रखें, ठीक है। एक मिसाल के तौर पर, एक ये तो बड़ी एक यानी एक लतीफा है, लेकिन बात समझाने के लिए ये लतीफा आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो लतीफा क्या है कि यानी ये भी हमने बल्कि अपने शायद हजरत से ही सुना था या किसी और बड़े से ही सुना था, बहरहाल कि एक जो साहब थे ना वो प्लेन में सफर कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि प्लेन में ना एक मुसाफिर कोई बैठा हुआ था, उस मुसाफिर के कंधे के ऊपर जो है ना वो एक तोता बैठा हुआ था, ठीक है। तो जब एयर होस्टेस गुजरती थी ना तो तोता जो है ना वो एयर होस्टेस को जो है वो बोसा देता था, तोता, ठीक है ना। तो वो एयर होस्टेस जो है वो बड़ी खुश होती थी, ओहो तोता जो है वो इतना अच्छा तोता है, तोता जो है वो मुझे बोसा दे रहा है और ये है वो है, ठीक है, बड़ी खुश होती थी वो, ठीक है। तो इन साहब को सूझी, शैतान ने इनको फंसाया, फंसाना था ना शैतान ने, तो शैतान ने इनके दिल में बात डाली कि ये एयर होस्टेस तो यार ये तो बड़ी खुश होती है, तो चलो मैं भी बोसा दे देता हूँ एयर होस्टेस को, ठीक है ना। तो अगली दफा जब एयर होस्टेस इनके पास से गुजरी ना, तो इन्होंने भी जो है वो हरकत कर दी जो तोता कर रहा था। तो अब जो है ना एयर होस्टेस ने जब इनकी तरफ से ये हरकत देखी तो उसको तो बड़ा गुस्सा आया, और उसने जो है ना वो, अभी जाहिर है लतीफा है तो लतीफे में तो इस तरह की बातें होती है ना, तो एयर होस्टेस ने जो है ना वो जहाज का दरवाजा खोला और इनको जो है ना वो दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया, ठीक है ना। अब जब इनको धक्का दिया ना तो वो तोता जो था ना वो भी इनके पीछे पीछे, अच्छा वो तोता भी इनका ही तोता था, इन्हीं के कंधे पे बैठा हुआ था, तो जाहिर है जब इनका तोता था तो जब इनको धक्का दिया एयर होस्टेस ने तो तोता भी जो है वो भी इनके साथ ही बाहर निकल आया। अब जो है ना वो तोता जो है ना वो तो उड़ रहा था, और ये साहब जो है ना वो अपने वजन के साथ नीचे गिर रहे थे, ठीक है ना। तो उस वक्त जो है ना इन्होंने तोते से कहा कि यार ये तो क्या कहते हैं, बड़ा गलत काम किया एयर होस्टेस ने, ठीक है, कि मैंने तो सिर्फ वही काम किया था जो कि तुम भी कर रहे थे, तो तुम्हारे साथ तो उसने ये काम नहीं किया और मेरे साथ उसने ये काम कर दिया, तो ये तो बड़ा जुल्म किया उसने मेरे ऊपर। तो उसने कहा, तोते ने इसको जवाब दिया कि भाई तुम्हें उड़ना तो आता नहीं था, तो तुमने ये काम करना ही नहीं था क्योंकि तुम्हें तो उड़ना नहीं आता था ना। मुझे तो उड़ना आता था ना, तो इस वजह से मैं ये काम कर रहा था, तुम्हें तो उड़ना नहीं आता था तो तुमने ये वाला काम क्यों किया, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यही उसूल हमारे ऊपर भी होता है कि भाई अगर कोई कोई काम कर रहा है अपने मखसूस हालात की वजह से, किसी मखसूस वजह की वजह से, और उसको उड़ना आता भी है, यानी उसकी इतनी ताकत है, इतना जो है वो उसके अंदर जो है वो सब्र और तहम्मुल है, उसके अंदर जो है वो इतना हौसला है कि जब मुश्किल हालात अगर आएंगे भी तो वो उससे निमट लेगा, तो भाई वो उसका हौसला है ना, उसका मामला है ना, ठीक है ना। आपके अंदर तो इतना हौसला नहीं है, आपके अंदर तो इतना रूहानी ताकत नहीं है, आपके अंदर तो इतना जो है वो इल्म नहीं है कि आप मुकाबला कर सकें उन हालात का, ठीक है। तो अपने आप को उनके ऊपर कयास मत करो, जिस तरीके से उस आदमी ने अपने आप को तोते पे कयास करके वही वाली हरकत करने की कोशिश करी ना जो तोते ने करी थी, तो उसने गलत किया ना, वो अपने आप को तोते पे कयास नहीं कर सकता था ना। अब जब जो है वो दोनों को बाहर निकाल दिया गया, तो तोता तो उड़ना जानता था, वो तो बच गया, ये तो उड़ना नहीं जानता था, ये कैसे बचेगा। यही हरकत हम भी करते हैं, ठीक है ना। हम भी ना अपने आप को किसी दूसरे पे कयास करके कोई चीज जो कि मामूल से हट करके, कयास से हट करके जो चीज जायज नहीं है, ठीक है ना, हम वो हरकत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम फिर अपने आप को बचा नहीं पाते हैं उसके बाद। बात समझ में आई, किसी को ना आई हो तो जरा बता दें, तोते की मिसाल इंशाल्लाह याद रहेगी, ठीक है। तो तस्वीर के मामले में जो है ना वो अपने आप को दूसरों पे कयास करने की हरगिज जरूरत नहीं है, बल्कि इसको अवॉइड करें अपनी जिंदगी में। बाकी पासपोर्ट के लिए मजबूरन तस्वीर खींचना, उसके लिए फतवा भी है, और जब मजबूरन कोई काम किया जाता है तो अल्लाह ताला फिर हिफाजत भी फरमाते हैं, ठीक है ना। आईडी कार्ड के लिए तस्वीर खींचना और इस तरह की कोई ऐसी अनअवॉइडेबल जो चीजें होती हैं उनके लिए तस्वीर खींचना, फिर वो मजबूरी की वजह से उसकी उसकी इजाजत है, और इजाजत के साथ साथ जब शरीयत के अंदर किसी चीज की इजाजत होती है तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजत होती है, और अगर नहीं होती है तो फिर हिफाजत भी नहीं होती है, ठीक है। छठा पॉइंट हमने पढ़ना शुरू कर दिया था कि अगर ये लड़ाई बढ़ रही है, बच्चा आपके साथ झगड़ रहा है, आपकी मुखालफत कर रहा है, तो उसका मतलब है कि ये खतरे की आलामत, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इसको एक्सप्लेन करने की इतनी जरूरत भी नहीं है कि आप उम्मीद है कि बात समझ ही जाएंगे कि जब आपकी अपनी औलाद आपके साथ झगड़ रही है ना, तो फिर अब इसका इल्जाम अनफॉर्चुनेटली शैतान के पास भी हर चीज का तोड़ होता है ना। हालांकि बड़ी क्लियर सी बात है कि भाई देर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग, राइट, समथिंग नीड्स टू बी फिक्स्ड, ठीक है ना। तो उसका कोई हल निकाले, उसका कोई सोल्यूशन निकाले, ठीक है ना। तो अब शैतान क्या करता है, सर शैतान तो चाहता है कि हम अपने मसलों का हल ना निकालें, ठीक है ना, हमारे मसले जो है वो बदस्तूर बाकी रहें बल्कि वो बढ़ते रहें, ये शैतान का गोल है, ठीक है। तो अब शैतान क्या करता है ये आप बता दें, शैतान क्या करता है ताकि हमारा ये मसला जो है ना कि औलाद हमारे साथ साथ जो है वो झगड़ रही है, ये मसला हल ना हो, इसके लिए शैतान क्या करता है। क्लास का ऑफिशियल टाइम खत्म होने में 1 मिनट रह गया है, तो जरा जल्दी से बता दो। भाई जब कोई मसला होता है तो उसको हल करने का तरीका ये होता है कि भाई देखें कि भाई मुझसे क्या गलती हो रही है, ठीक है ना, मैंने क्या गुनाह किया, मैंने क्या गलती करी कि जिसकी वजह से मसला क्रिएट हो गया, ठीक है ना। तो उस मसले को हम डायग्नोज करते हैं और फिर उसका जो है वो हल निकालते हैं, ठीक है। तो बच्चों का माँ बाप से झगड़ना शुरू कर देना, तो ये तो इमीडिएटली माँ बाप को परेशान कर देता है और माँ बाप को बिल्कुल मुतवज्जे कर देता है इस तरफ कि वो गलती तलाश करें और उसको जो है वो हल करने की कोशिश करें, ठीक है। लेकिन शैतान इससे उनको रोकता है, वो कैसे रोकता है, बच्चे का कसूर है, ठीक है, बिल्कुल सही फरमाया। एक तरीका जो उसके रोकने का होता है वो ये कि ये मेरा कोई कसूर नहीं है बल्कि ये बच्चे का कसूर है, ठीक है ना। और दूसरा क्या तरीका होता है, और भी बातें कहते हैं, ध्यान हटा देता है अपनी तरफ से और बच्चे का ही मसला है मेरा नहीं। ठीक है, ये बात हो गई कि बच्चे का मसला है, बच्चे का कसूर है कि वो मुझसे झगड़ रहा है, मेरा कोई कसूर नहीं, ठीक है ना। और भी चीज डालते हैं बच्चे के कसूर के अलावा किसी और का भी कसूर। रिश्ता देखते वक्त फोटो की जरूरत होती है, वो लेना कैसा है, लड़के वाले भी लेते हैं लड़की की पिक्चर। रिश्ता देखते वक्त जो देखना होता है ना एक दूसरे को, तो उसको जो है ना बाकायदा शरीयत के अंदर जायज कहा गया है, बल्कि हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका जिक्र किया है कि ये करना चाहिए, लड़का लड़की को देख ले, लड़की लड़की को देख ले, ठीक है। अब आजकल के दौर में चूंकि हमारे जो 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 मामलात होते हैं वो दूर दराज के लोगों के साथ भी होते हैं, तो इस वजह से जो है ना वो बाकायदा जा करके देखना जो है वो मुमकिन नहीं होता बहुत सारे केसेस के अंदर। तो उसमें फिर वो तस्वीर की नौ नौ बताती है, ठीक है। तो ऐसे में अगर तस्वीर लेकर के दी जाए ना, तो उसमें फिर दो बातों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि आप अपने बच्चे का रिश्ता जहां पे कर रहे हैं वो फासिक और फाजिर लोग ना हो। सबसे पहला उसूल ये कि फुसाक और फुजार में अपने बच्चे या बच्चे का रिश्ता करें ही नहीं, ठीक है ना। ये फुसाक और फुजार जो है ना वो पहले दिन से आपको धोखा देंगे और आखिरी दिन तक आपको धोखा देते रहेंगे, ठीक है ना। तो उनसे ये तवक्को रखना कि हम उनको तस्वीर भेजेंगे और वो उस तस्वीर को इंटरनेट के ऊपर पब्लिश नहीं कर देंगे, ये बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो भाई आपने फुसाक फुजार के साथ रिश्ता तय कर ही क्यों रहे हैं, ना करें उनके साथ रिश्ता तय, ठीक है ना। तो रिश्ता तो तय करें ना जो कि ज़रा दीनदार और यानी तमीज़ तरीके के लोग हों, ठीक है ना, अल्लाह का खौफ रखने वाले, कुछ किसी हद तक तो अल्लाह का खौफ रखने वाले लोग हों ना, उनके साथ रिश्ता तय करें। अब उनको तस्वीर भेजते हुए आप उनसे वादा लें, ठीक है, कि ये तस्वीर जो है ना वो आपने सिर्फ बस इस मकसद के लिए लड़के को दिखानी है या लड़की को दिखानी है, और उसके बाद इसको जाया कर देना, ठीक है ना, इसको डिलीट कर देना, इसको आपने सेव करके नहीं रखना, ठीक है। तो इस तरह की पाबंदियों के साथ दीनदार लोगों को पाबंदियों के साथ तस्वीर भेजें, ठीक है। हाँ, तो जो सवाल आपसे किया था उसका ये करते हैं कि दूसरे ने बिगाड़ दिया, किसी और ने खराब कर दी, ठीक है, कि ये जो बेटा बेटी मुझसे झगड़ रहे हैं ना, तो ये जो 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 माएं होती हैं वो कहती हैं ये बाप ने इनको बिगाड़ दिया, इनके अब्बा ने इनको मेरे खिलाफ कर दिया, और अब्बा से अगर वो झगड़ रहे होते हैं तो अब्बा कहते हैं कि ये अम्मा ने इनको बिगाड़ दिया, अम्मा ने इनको मेरे खिलाफ कर दिया, ठीक है ना। तो या तो वो बच्चे के ऊपर डालेंगे कसूर को, या जो है वो माँ या बाप के ऊपर डालेंगे, या किसी और चीज के ऊपर डालेंगे। बस शैतान का तरीका ये होता है कि तुम अपने कसूर को मत मानो, अपना कसूर मत मानो, बल्कि तुम किसी और का कसूर ठहराओ, ठीक है ना। जो खराबी तुम्हारी जिंदगी में है, छोटी है बड़ी है, औलाद के साथ है कि मियाँ बीवी के आपस में खराबी है, किसी और के साथ खराबी है, उसका जो यानी कामयाबी का पहला स्टेप होता है ना, शैतान की कामयाबी का पहला जीना ये होता है, ब्लेम समवन एल्स, ब्लेम समवन एल्स, नेवर ब्लेम योरसेल्फ, ठीक है। तो यही होता है फिर घरानों के अंदर, सही है। अब हमारे दीन के अंदर तस्वुर ही पूरा का पूरा डिफरेंट है। कुरान मजीद में अब कितनी दफा बताएं, लेकिन जितनी दफा बताने की जरूरत पड़ेगी उतनी दफा बताएंगे, आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा ने अपनी गलती का सारा इल्जाम जो है वो अपने ऊपर लिया, शैतान तक के ऊपर नहीं डाला। हालांकि शैतान ने उनको बहकाया था ना, कस्में खाई थी और झूठ कहा था और फरेब दिया था, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला से जब दुआ करी तो रब्बना ज़लमना, ए हमारे रब, हम दोनों ने अपनी जान के ऊपर जुल्म किया, व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन, राइट। अपने ऊपर पूरा का पूरा ब्लेम लिया, उनकी माफी हो गई, सही है। यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ताला ने लिखा, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, अपने ऊपर सारा का सारा ब्लेम ले लिया। हालांकि उनकी कौम का कसूर नहीं था क्या, कि उनकी कौम जो है वो उनकी बात नहीं मान रही थी, उनकी कौम जो है वो उनका इनकार कर रही थी, राइट। तो वो तो बड़ी आसानी से अपने कौम के ऊपर कसूर डाल सकते थे कि अल्लाह सारा का सारा मसला तो वहां से शुरू हुआ, दे स्टार्टेड इट, हम कहते हैं ना यू स्टार्टेड इट, है वो भी कह सकते थे ना दे स्टार्टेड इट, तो इस वजह से मैं जो हूँ मछली के पेट में पहुंच गया हूँ। लेकिन उन्होंने जब अल्लाह ताला के सामने इल्तिजा करी तो अपने ऊपर इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे दीन का, ये बुनियादी यानी नजरिया है हमारे दीन का, दीदे कसूर इसको कहते हैं, ठीक है। और शैतान जाहिर है चूंकि बुनियादों के ऊपर हमला करता है, जैसे यूरोपियन तहजीब पिछली क्लास में बात हुई ना कि ये हमारे दीन की बुनियादों पर हमला करती है, उसी तरीके से शैतान जो कि यूरोपियन तहजीब के जो है वो असल माखज है, असल जो है वो जड़ है, वो दीन की बुनियादों पर हमला करता है। तो दीन की बुनियाद पे कैसे हमला करता है, ब्लेम समवन एल्स, ठीक है। तो यहाँ से आगे जो है वो हम मजीद नहीं पढ़ेंगे आज की क्लास में क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है, तो इसमें फिर बस एक बात करके ये आज इस क्लास को खत्म करेगा, वो ये कि भाई हमने जो है ना वो आपके ग्रुप्स के ऊपर एक दुआ भेजी, ठीक है, हमने एक दुआ भेजी है जो कि हमने अपने हजरत से बयान के अंदर सुनी, ठीक है। तो उस दुआ को जब हमने भेजा है ना, तो उसके बाद से लोग जो है वो पूछना शुरू हो गए कि इसका हवाला बताएं, ठीक है ना, कोई पूछ रहा है कि जी ये कुरान की आयत है या ये हदीस है, ठीक है। तो भाई इसका जवाब सुन लीजिए कि अगर ये हदीस होती तो हम लिख देते कि ये हदीस है, अगर ये आयत होती तो हम लिख देते ये आयत है, ठीक है ना। तो ये ना कुरान की आयत है ना ये हदीस है, बस ये एक दुआ है किसी ने मांगी, ठीक है ना, तो बड़ों ने जो है उसको नकल कर दिया। अब इसका हवाला जो है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर हम हदीस बोलते इसको तब आप पूछती ना कि जी हवाला इसका बताएं, हमने तो नहीं बोला कि ये हदीस है, ठीक है। अब आपके ऊपर कोई मजबूरी भी नहीं है कि भाई आप, आपकी मर्जी है आप मांगे इस दुआ को या ना मांगे, या कोई आपके ऊपर प्रेशर तो नहीं है मांगने का, आप नहीं चाहते, आप समझते हैं कि हदीस नहीं है तो मैं क्यों मांगू, मत मांगे फिर, आपकी मर्जी है भाई, ठीक है। लेकिन ये बात तो जरूर है ना कि ये जो दुआ है ये हमारे दीन की बुनियाद है, यानी ये बेशक इसका हवाला बिल अल्फाज मौजूद नहीं है लेकिन इसका हवाला बिल मानी तो मौजूद है ना, यानी कुरान के अंदर इसका हवाला बिल मानी मौजूद है कि हमारी अपनी कोई गलती होती है, हमारा अपना गुनाह होता है जिसकी वजह से मुसीबत हमारे ऊपर मुसल्लत होती है, वो मुसीबत जो है वो मछली की शक्ल में मुसीबत आए या वो मुसीबत किसी इंसान की शक्ल में मुसीबत आए या वो मुसीबत किसी और बीमारी की वजह से मुसीबत आए, बहरहाल मुसीबत मुसीबत होती है, ठीक है ना। तो मुसीबत जो मुसल्लत हुई है वो किसी गुनाह की वजह से मुसीबत मुसल्लत हुई, ठीक है ना। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन, कोई मुसीबत तुम्हारे तुम तक नहीं पहुंचती, क्या है वो, कई जगहों पे बल्कि कुरान मजीद के अंदर ना बिमा कसबत अईदीकुम, तुम्हारे हाथों की कमाई होती है वो मुसीबत, ठीक है। तो इस वजह से अगर इस दुआ का कोई हवाला नहीं भी मिलता, ठीक है, वरना तो क्लेम तो हमने किया ही नहीं है कि यह हदीस है, लेकिन अगर कोई और हवाला इसका नहीं भी मिलता लेकिन कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है ना, और हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखना और इसको अपने दुआओं के अंदर शामिल रखना ये हमारी जरूरत है, ये हमारी मजबूरी है, ठीक है ना। तो इस दुआ को मांगने में अल्लाह ताला से कोई हर्ज नहीं है, हमारे मशायख जो हमारे जो के दीन को हमसे ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं उन्होंने भी हमें ये दुआ मांगने को कहा, ठीक है ना। तो अब हमें बगैर हवाले के भी इस दुआ को जो है ना वो मांगने की कोशिश करनी चाहिए और अपना इस तरह का जहन बनाना चाहिए कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों के ऊपर माफी मांगे और इस बात को हम एक्नॉलेज करें कि हमारे ऊपर जो मुसीबतें आती हैं वो हमारे गुनाहों की वजह से आती हैं, ठीक है ना। हाँ अलबत्ता अगर कोई बहुत ज्यादा मायूसी का शिकार होने लगा हो तो फिर जो है वो आप अल्लाह ताला की रहमत की तरफ मुतवज्जो हो कि अल्लाह ताला माफ करने वाले हैं, जब माफी मांग ली तो अल्लाह ताला क्यों नहीं माफ करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मसला तो ये है कि हम माफी तो मांगते नहीं है, हम जो है ना वो यानी खामखा की फ्री की मायूसी में मुब्तला होने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, वो मायूसी कोई नहीं होती, बस एक जहनी खराबी होती है। भाई माफी तो मांगे ना अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला रहीम करीम है, अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अपना निजाम बनाया है कि माफी मांगोगे मैं माफ करूं, ठीक है। तो इस वजह से
बहरहाल ये कुछ लोगों के जो मैसेजेस आए थे तो उसका जवाब भी इसी क्लास के अंदर ही कवर हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बात की समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। इन्होंने क्या मैसेज लिखा है कि वही हमारी तबीयत है कि मानना नहीं है कि हमारी वजह से हम पर कोई मुसीबत आई है, इसलिए हवाले मांगते हैं, ये भी शैतान की तरफ से। ठीक है, चले वो एक आदत बन गई है, बहरहाल ठीक है एक तरह से वो आदत कि हम ही बगैर हवाले के जो है वो आप कोई काम ना करें, लेकिन उसका हमने आपको जवाब दे दिया है कि इसका हवाला बिल अल्फाज, यानी इन अल्फाज में आपको हदीस अगर नहीं भी मिलती है तो भी हवाला बिल मानी तो 100% हमारे दीन के अंदर, कुरान में भी और हदीस के अंदर भी और हमारे मशायख की तालीमात के अंदर भी हर जगह मौजूद है इसका हवाला, लेकिन वो हवाला बिल मानी है यानी मफहूम, ये हमारे दीन के अंदर लाजमन मौजूद है कि मेरे गुनाहों की वजह से मेरे ऊपर मुसीबतें मुसल्लत होती हैं। ठीक है, वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।